भक्ति दो प्रकार की होती है। एक बाह्यमुख जीवों को किसी प्रकार से भक्ति में लगाने के लिए उनकी रीति नहीं रहने पर भी उनको शास्त्र का भय दिखलाकर उनको भक्ति में प्रवर्तित करता है। भक्ति में जब आदमी प्रवर्तित होता है, रुचि नहीं है, उत्साह नहीं, किंतु उनको उत्साह इत्यादि लेकर कष्टों का भय दिखला करके उनको भक्ति में जो लगाया जाता है इसको कहते हैं वैधी भक्ति। इस वैधी भक्ति में गुरु कर्ण दीक्षा और प्रकार के अंगों में से जो अनुकूल हैं उनको पालन करना जरूरी होता है। गुरु में भी उच्च कुल का भाव, सौंदर्य, तत्व ज्ञान, शास्त्र ज्ञान इत्यादि देखा जाता है। शिष्य में भी वो सब सद्गुण जो शास्त्रों में कहे गए हैं इसको देखा। फिर वो हरि कथा सुनते धीरे धीरे उसका स्थूल विचार दूर होता जाएगा, भक्ति में प्रवेश कर एक ये पद्धति। और जिनको पूर्व जन्म का कुछ संस्कार है और इस जन्म में भी वैसा ही उसको विष्णु का संग मिल गया भगवान की कृपा से गुरु भी ऐसे मिल गए और भगवान की कृपा से उनको ऐसा स्थान भी मिल गया भजन करने का अनायास ही ब्रज नवदीप ये सब मिल गया और साधुओं का संग भी हो गया, पूर्व जन्म का संस्कार भी उनमें है। ये सब चीजें मिलकर के किसी साधक को रुचि के सहित वो भजन करने की लालसा। इसमें स्थूल गुरु दीक्षा स्थूल अनुष्ठानिक प्रधान में इसके बुरी बुरी उदाहरण, किंतु संघ के ऊपर में गुरु जी का गुरु का संग होगा उसमें गुरु दीक्षा क्या है, उसमें गुरु दीक्षा है वही सब बातों का जो भक्ति के लिए जो रुचि के लिए अनुकूल होती है वो सब इसके लिए विशेष आवश्यक है। गुरु उन लोगों को वही चीज देता है। स्थूल व्यक्तियों को पहले स्थूल भाव ये सब देगा, स्थूल संग देगा, स्थूल सेवा में लगाए और जिनको रुचि है पूर्व जन्म का संस्कार है उनमें इन लोगों की रुचि ही नहीं जाएगी। इसलिए ऐसे लोग जो हैं राधांग भक्ति के अधिकारी कुछ लोग इनके अंदर है, इसलिए इनकी दीक्षा केवल अनुष्ठान की नहीं होगी। इनकी दीक्षा कैसी होगी, अभ्यंतरी विद्वत जरूरी दृष्टि से इनकी दीक्षा होगी और उसको ग्रहण कर रामानंद का जो संवाद है वो वैदिक भक्ति का नहीं, यह है रागानंद का उपाख्य। किसी साधक को ऐसे पहले जन्म का संस्कार है, रुचि है और उसको यदि अच्छी तरह से श्रवण करेंगे उनका रागानंद भक्ति में जरूर प्रवेश। उन्होंने ये भी बतलाया श्रद्धा स्वाभाविक रूप से पहले ही स्थिति से दो प्रकार की है, एक होगी ऐसे लोगों का संग में उसकी उसकी प्रवृत्ति होगी और एक होगा वैदिक भक्ति की तरफ में ले जाने वाली और एक होगी रागानुजा भक्ति की तरफ में। शास्त्र अवधारणा मई एक लोभमयी श्रद्धा, ये दो प्रकार की लोभ भी बदला है। इसके बाद में साधु संग भी होगा, उनको शास्त्र जानने वाले लोगों से पहली वाली का संबंध अधिक मर्यादा मई, और दूसरी होगी लोभमयी, उसको वैसा ही साधु संग के लिए वो दूसरे प्रकार का, क्योंकि पूर्व जन्म में उसका कुछ संस्कार ही ऐसा हो गया है। धीरे धीरे वही बढ़ते बढ़ते दोनों श्रद्धाओं के लिए जरूरी है पानी का सींचना अर्थात श्रवण और कीर्तन, दोनों प्रकार की श्रद्धाएं उत्पन्न होने पर भी यदि हरि कथा ऐसी सुनने को न मिली, श्रवण और कीर्तन करने के लिए ऐसा सुयोग नहीं मिला, तो दोनों लताएं ही सूख जाए। इसलिए दोनों में ही श्रवण और कीर्तन करना प्रधान थी और बाकी सब क्रियाएं पीछे थे, श्रवण और कीर्तन मूल है। जब श्रवण में रुचि नहीं हुई, श्रवण में रुचि नहीं हुई, थोड़ा सा वो कीर्तन भी कर रहा है तो उसका कीर्तन गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आदो श्रवण, सबसे पहले श्रवण करते हैं। यदि राय रामानंद का संवाद नहीं होता या ऐसा इसमें है और नहीं सुनते तो हम लोगों को कभी भी इन सब चीजों की धारणा। अब ये बढ़ करके हरारायण संवाद में आया, सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म में रह करके विष्णु की सेवा जो करता है यही हमारे लिए साध्य और साध्य है उनकी सेवा, और उससे संसारिक द्रव्यों का पाना या स्वर्ग या मोक्ष तक पाना ये हुआ साध्य। महाप्रभु जी ने इसको भी वाद्य कहा। आगे बढ़े तब सात कर्मों का त्याग करना ही कृष्ण के प्रति कर्म अर्पण, जो कुछ करते हैं जज्जु होती जब करोती जदा नासी, जज्जु होती जदा नासी जदा भगवान को सब कर्मों का अर्पण। ये संसार में जो भक्त लोग हैं साधारण लोग वो करीब करीब 99% यही कर, इसी को वो शुद्धा भक्ति समझते हैं। जो कुछ करो भगवान को। महाप्रभु जी ने कहा यो वाद्य ये भी, क्योंकि आत्मा से इसका संबंध नहीं, कृष्ण के भक्ति से इसका कोई संबंध नहीं, ये सब स्थूल व्यापार है। और इसका जो साध्य है मुक्ति इत्यादि वो भी बाह्य, सब उन्होंने कहा सब धर्मों का प्रत्याग करो। तो यही गीता में बतलाया सर्व धर्मानुपत्य माम एकम, सब कुछ त्याग। अतः तो इनसे बाहरी जितना अनुष्ठान है इनसे सब कुछ नहीं होगा, ये भक्ति नहीं है, इसमें भक्ति है ही नहीं। भक्ति आत्मा की वृत्ति है, जब तक आत्मा की वृत्ति ना हो तब तक वो प्रेमा भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि रागानुभा के लिए कह रहे हैं, इसलिए रागानुभा भक्ति से इसका संबंध नहीं। सब हमें ज्ञान है प्रयास मुझे ज्ञान कर्म इत्यादि सब प्रकार के इन चीजों को दूर करके भगवान की कथाओं का श्रवण करो, उन कथाओं को प्रणाम करो, कथावाचक को स्थान को सबको प्रणाम करो। तो ऐसा करने से तुम अजित भगवान को भी जीत सकते। अजित जो भगवान दूसरों के लिए उसको भी कथाओं के माध्यम से जय किया जा। उसके बाद उन्होंने बतलाया आप भगवान का अर्चन पूजन सब प्रचार से करेंगे, किंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं हो तो उसे भगवान प्रसन्न नहीं हो, और अर्चन भी नहीं करते हैं किंतु आपके हृदय में प्रेम है तो जो कुछ भी देते उसी से उसको भगवान प्रेम के साथ में ग्रहण कर, वो क्या है गीता में पत्रम पुष्पम फलम द्वयम जो उन्हें भक्त पत्र पुष्प जो कुछ भी है वो यदि प्रेम से दिया जाए तो भगवान को ग्रहण कर। जैसे सबरी के सुदामा के सूचक, हाथी के कमल, ऐसे मुनि थे। इसके बाद में महाप्रभु ने कहा और आगे चलो, तब उन्होंने कहा प्रेमा भक्ति होना चाहिए, ये वैधि भक्ति के लिए कहा गया, कृष्ण भक्ति रसभाविता बतलाया। जिसके हृदय में प्रेम है ऐसे महात्माओं का यदि संग हो, प्रेमी रसिक वैष्णवों का, तो अपना शिष्य देकर के भी उसकी प्रेमा भक्ति को ग्रहण करने की चेष्टा, वो प्रवृत्ति वृत्ति अपने हृदय में लाने की चेष्टा। कौन सी वृत्ति? कृष्ण भक्ति और रस एक भक्ति है, भक्ति आया है वही भक्ति के लिए, और भक्ति रस जो हुआ ये रागा रागानुगा। तो यदि रागानुगा भक्ति रस पाने की लालसा है तो ऐसे वैष्णवों का संग अनिवार्य है, ऐसे गुरु का संग अनिवार्य है, बिना ऐसे वो हो नहीं सकता। इसलिए उसकी मती सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी, या पीछे से भी सुना चौथे ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर, हम लोगों के गुरु पार पर ऐसे रसिक वैष्णवों का संग होगा तो ही वैसी भक्ति हो सकती है। अन्यथा हमको समझ में ही नहीं आएगा कि भक्ति में तारतम्य क्या है, हमको ज्ञान नहीं होगा, किंतु भक्ति में तारतम्य है। महाप्रभु जी ने कहा कि ठीक है आगे से सब दास्य, सब सत्य, पात्सल्य और अंत मधुर रस का पाठ, गोपियों का मधुर रस वर्ण। महाप्रभु जी ने कहा कि और आगे बढ़िए, तो इसके बाद में पूछने वाला जगत में नहीं, महाप्रभु जी ने कहा आप ही ने इसको। तब उन्होंने राधा प्रेम को सर्वोत्तम बतलाया, तब उन्होंने पूछा ठीक है राधा प्रेम ही सर्वोत्तम है, क्योंकि सब गोपियों को भी छोड़ करके एकांत में उनके वशीभूत हो जाते और उन्हीं के लिए कहा न पा रहे हम निर्वस्त्र, मैं तुम्हारे अत्यंत ऋणी हूँ, जन्म जन्म तक तुम्हारे इस ऋण को कभी भी मैं कभी भी पूरी नहीं। राधा जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सबसे श्रेष्ठ, ये हुआ क्या, ये हुआ साध्य भी है साधन भी है, दोनों है। राधा जी का प्रेम ही साध्य है और साधन क्या है, प्रारंभ से राधा का भक्ति। कृष्ण को साध्य नहीं बतलाया, कृष्ण के प्रति जो आश्रय लोगों का जो प्रेम है जिसके द्वारा कृष्ण प्रतिभूत हो जाते हैं ये साध्य है, ये ठीक रखना चाहिए। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन साध्य नहीं, साध्य क्या, उनके प्रति जो प्रेम है, प्रेम है प्रेम है, वो प्रेम नहीं रहने से कृष्ण भी रहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने कहा कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व और विलास, ये चार चीजें थी, उसका भी उन्होंने वर्णन किया। कृष्ण तत्व, कृष्ण ही समस्त अवतारों की मूल अवतारी है और कृष्ण का जो स्वरूप है नवकिशोर नटवर देनुकर नटवर नवकिशोर नरबपू तहार स्वरूप, नरबपू नवकिशोर नटवर नंदनंदन और क्या ललित हीर ललित और विदग्ध चतुर, ये सब कृष्ण का जो रूप है वो सर्वांग सुंदर है, सब रूप है, विशेष करके ये गोपियों के लिए मधुर रस के लिए ये कृष्ण नायक, कृष्ण उपास। और राधा जी के लिए बताया कि उनकी लाजनी शक्ति है, कृष्ण को सब प्रकार से आनंद देती है, उनके प्रचंड अंग प्रचंड भाव जो कुछ ही है, श्रृंगार साज स्नान करना इत्यादि सब कृष्ण प्रेम से बना हुआ है। कृष्ण ही प्रेम श्री संध्या में स्नान करती है। सबसे पहले तारुण्य, फिर तारुण्य और फिर लावण्य। इस अमृत सिंधु में पहले तारुण्य अमृत सिंधु में पहला स्नान, दूसरा स्नान तारुण्य अमृत धारा में स्नान करती है और तीसरा लावण्य। और इसके बाद में जितने प्रकार के श्रृंगार हैं वो कृष्ण के ये अष्ट सात्विक व्यभिचारी और ये सब जो भाव हैं उनका श्रृंगार धारण कर कृष्ण को सब प्रकार से आनंदित करती। ये राधा जी का स्वरूप है। कृष्ण जगन मोहन है किंतु राधा जी जगन मोहन मोहिनी है। बहुत से तत्वों का बतलाया। इसके बाद मैंने बतलाया दोनों का परस्पर जो प्रेम तत्व है वो बतलाया। वो प्रेम तत्व क्या है? ये प्रेम तत्व जगत में जो प्रेम होता है ये होता है अंधा और जड़ होता है ये जगत का। और जैसे लोहे में मोर्चा होता है, मोर्चा है जंग, वो जंग के समान। जैसे जंग कहीं लोहे में थोड़ा सा भी लग जाए पूरे को बर्बाद कर देगा, ऐसे संसारी की ये जो प्रेम कहा जाने वाला है वो काम है वो जीवन को बर्बाद कर देता है। प्रेम का चाहे शुद्ध लखबान हिम है। लखबान माने क्या है? लखबान तपाए जाने पर उसको मैल को छोड़कर विशुद्ध एकदम चमचमाता हुआ सोने के समान निर्दाग वो प्रेम। कृष्ण ऐसे प्रेम से ही वशीभूत होते हैं। ये राधिका जी का लादनी का सार प्रेम, प्रेम का सार महाभाव, महाभाव स्वरूप है राधा ठाकुर। इसलिए राधा रानी का ये स्वरूप, उनका कार्य और कुछ नहीं बस कृष्ण को प्रसन्न करना किसी प्रकार। फिर बतलाया विलास तत्व। विलास तत्व में बतलाया दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। उसमें नाश हो रमन, नाश हो रमनी, दोनों एक हो जाते हैं। विरह रूपी कड़ाह में दोनों का चित्त द्रवित हो जाता है। तो विरह रूपी कड़ाह में हर्मोदय, हर्म माने क्या है? नीचे आग, विरह का ताप जलता है और दोनों उसमें मिल गए लाख और वो दोनों गल करके पानी जैसा द्रवित, दोनों मिल गए। अब वो तुम और हम सब दोनों उसमें, अब वहां पर नाश हो रमनी वैसी स्थिति है। और इसी यही है महाभाव का अंतिम अवस्था मादन और मोदन। राधा जी का तृप्त और कहीं भी ये नहीं, इसी को बतलाया महाभाव। कृष्ण हुए रसराज और ये हुआ राधा जी का महाभाव, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। यही विलास तत्व है। राधा रामानंद जी ने कृष्ण को देखा है, राधा जी को भी देखा है, जुगल विलास भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य जब हुआ जबकि महाभाव और असराय दोनों मिलकर के एक हो गए, देख करके झट मूर्छित हो गए। और जब ही एक कह रहे हैं तो महाप्रभु जी ने हाथ वहां पर उनके मुख में रख दिया। बस क्यों बस कहा? बस कहने का यही तात्पर्य था कि मैं वही हूँ और स्वराज और महाभाव दोनों से मिल करके जब भी आपने इसे और आगे कुछ कहा तो हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। मैं वही चीज हूँ और जगत के लोग सब जान जाएंगे कि मैं वही हूँ, इसलिए चुपचाप आपने बस यही कहा। इसके बाद में महाप्रभु जी ने कहा अच्छा ये तो सब चारों तत्व हुए, अब इसमें जो हमारा प्रयोजन तत्व है, प्रयोजन तत्व क्या हुआ जीवों के लिए वो बतलाएंगे। ये सब चीजों को जीव कैसे प्राप्त करेगा, जो जीव है साधक कैसे प्राप्त करेंगे, कितने उच्च भाव राजेश्वर सभी लोग नहीं पाएंगे। पहले तो कृष्ण की भक्ति ही कोटि कोटि महामुनि कोटि कोटि लोगों में से कोई एक को ऐसा हो, और उसमें कोटि कोटि लोगों में से जो एक का हुआ, इसे खोलेगा इसको हवाला दे, उसमें से कोटि कोटि में से भी जो एक हुए, वैसे कोटि कोटि में से उसी एक का ही उस प्रेम में प्रवेश होता है। यहां तक कि राक्षस सख्त और बात्सल्य का भी वहां पर प्रवेश नहीं है। मधुर में भी मर्यादा में ही मधुर का भी वहां पर स्थान नहीं है, वो लोग भी नहीं प्रवेश करते। रुक्मिणी सत्यभामा जैसे लक्ष्मी इत्यादि के लिए भी वो बहुत परम दुर्लभ है। राय रामानंद कह रहे हैं साध्य साधन बिना केहू नहीं पाए। महाप्रभु जी कह रहे हैं प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि यही है, साध्य वस्तु की यही तक अवधि मैंने सीमा है, कहां तक बतलाया राधा जी के भाव आश्रय का भाव यही तक अंतिम उसकी सीमा है, कृष्ण प्रेम की जो श्रीमती राधिका में अवस्थित है। तुम्हार प्रसादे यहाँ ज्ञान लो निश्चय, आपके आपकी कृपा से मैंने इसे समझा। महाप्रभु जी कह रहे हैं राय रामानंद की, रामानंद की कृपा से महाप्रभु जी ने इसको जाना। महाप्रभु जी झूठ बोल रहे हैं कि सच अभिनय कर रहे, अभिनय कर रहे नहीं, ठीक कर ठीक पूरा ठीक कर रहे हैं, इसलिए तो उनका अवतार हुआ था कृष्ण, और इसलिए राधा भाव दिया था। अब राधा भाव तो उनका जैसे कांति तो दिया किंतु भाव नहीं था, राय रामानंद के पास में क्यों पहुंची, और ये भीतरी रहस्य जो ललिता विशाखा जी राधा जी की सेवा करती हैं उनको पता है राधा जी के भाव का, इसलिए उनका ये जो रहस्यपूर्ण भाव था महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से अर्थात विशाखा सखी जी से दिया, तब अनुभव किया। ओ ऐसी बात, यदि राधा जी का भाव हृदय में न रहे तो इन भावों को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए उनकी शिक्षा से महाप्रभु जी के अंदर में कौन जैसे महाप्रभु में या कृष्ण में तब तो कमी आ जाएगी, पूर्ण नहीं हुए पूर्णम अदह पूर्णम उदच्यते, ये सब गड़बड़ हो जाएगा, और कृष्ण में भी अपूर्णता आएगी, कजे नहीं अपूर्णता नहीं आएगी, जानते हैं कुछ अनुभूति नहीं थी इसकी, ये वो राधा जी का भाव कैसा होता है अब उन्होंने कुछ समझा, किंतु अभी और भी बाकी रह गया नहीं? कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं रसोई बनाना नहीं जानते, उनको राबड़ी या खुरचंद उनको खाना पसंद है, रसगुल्ला होना होता है ना बहुत अच्छा लगता है वो खा लेते हैं, किंतु कैसे बनता है प्रस्तुत किया जाता है ये उनको पता नहीं। जब इनको कभी इच्छा हुई खाने की और कारीगर वैसा नहीं मिला या दुकान नहीं रही तो क्या करेंगे, खा नहीं सकते। अब वो चाहते हैं कि जब जब हमारी इच्छा हो तब हम उसको खाएंगे भी, तो तुम बनाना सीखो। तो कृष्ण पहले कृष्ण जाता आस्वादक थे खाने वाले, किंतु इसका प्रिपरेशन कैसे होता है वो नहीं जानते हैं, केवल आस्वादन किया पांचों रसों का, शांत दास सबके बाद सल्ला और मधुर का, और सबसे मधुर लगा वही उसको मधुर, किंतु भाई ये कैसे बनता है, अब उसका प्रिपरेशन जानने के लिए कैसे ये होता है ये जानने के लिए अब इनसे प्रश्न कर रहे हैं। साध्य वस्तु साधन बिना के हो नहीं पाए, कृपा करी कह रहा है पावर, बिना साधन के कोई साध्य वस्तु नहीं पाता। वाणिज्य व्यवसाय नौकरी चाकरी इत्यादि के द्वारा पैसा पाया जाता है कठोर परिश्रम के साथ। जिनके माता पिता धनी हैं उनके लड़के पैसे को बर्बाद करना जानते हैं किंतु कमाना तो जानते नहीं, इसलिए उनके यहाँ कोई पैसे का कोई मूल्य नहीं होता बर्बाद करने। यदि पैसे को कमाना पड़ेगा तो वो समझेंगे। इसी तरह से बिना साधन के यह प्रेम भी नहीं होता तो ये कैसे मिलेगा। एक तो महाप्रभु स्वयं अपने अनुभव करने के लिए, और दूसरी बात जीवों में जो अधिकारी जन हैं वो लोग भी जाने और इस चीज में प्रवेश करें, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न। महाप्रभु कुछ हद तक तो जानते हैं किंतु इस प्रेम के विषय में अभी तक नहीं जानते हैं, अब वो जान रहे हैं। कृष्ण कभी साधक रहे कभी साधक न रहे, वो साध्य ही रहे और आस्वादन करने वाले, अब वो साधक ज्ञान करके जीवों के लिए इसके लिए वितरण करेंगे। इसलिए कहते कृपा करी कह रहा है पावर, यह कैसे मिलेगा, ये कैसे संभव हो सकता है। एक करोड़पति आदमी है, घर में ही उन्होंने नौकरों चाकरों को लगा देता है ये रसगुल्ला बनाओ, वो बनाते किंतु अपने नहीं बना सकते। कोई हर्ज नहीं है, उनके बड़प्पन में कोई कमी नहीं आएगी, किंतु यदि बनाना सीख लेने तो और भी एक बार। वैसे आज कृष्णचंद्र जी इनसे पूछ रहे हैं कैसे इस प्रेम में प्रवेश किया जाता है और कैसे जीव इसमें प्रवेश। सबसे पहली बात ये है पूर्व जन्म का संस्कार हो और इस जन्म में उस संस्कार को और आगे पुष्टि कराने वाला कोई गुरु हो। ऐसे नहीं होगा, पहली बात तो पहली शर्त। दूसरी शर्त है उन संस्कारों के द्वारा किसी के अंदर में लोभ उत्पन्न हो गया कि मैं खाऊंगा तो रसगुल्ला ही, मैं और कोई चीज नहीं खाऊंगा, ये लोभ होना चाहिए। ऐसे ही मधुर रस के लिए या प्रजरस के लिए ऐसा लोभ चाहिए। पूर्व जन्म में उनको सिद्धांत का ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख हैं। इसी को कहते हैं संस्कार पूर्व जन्म का। वो लोग शास्त्रों का तात्पर्य है ये सभी जानते हैं। अच्छा गोपियां जितने प्रकार के प्रमाण इत्यादि हैं और सब सिद्धांत है वो जानती थी कि नहीं,
जो कहीं वही सिद्धांत है।
सिद्ध जैसे साधक, नारद जी जैसे आचार्य, भक्ति के आचार्य, इन सबको नंद बाबा ने उद्धव जी को देखो ना जैसे एकदम चमत्कृत कर दिया गोपियों ने, और गोपियां तो और चमत्कृत कर दी। उनके पास में सभी सीखने के लिए ये नारद जी उद्धव जी जो भक्ति के बड़े बड़े आचार्य हैं सब लोग उनके यहाँ से सब सिद्धांत में पारंगत। इसलिए मूर्ख लोग इसको पाएंगे जिनको सिद्धांत का ज्ञान ही नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कारों से और इस जन्म के संघ के संस्कार से उनकी भक्ति में लोभ जो उत्पन्न हो गया और इधर में इतर चीजों में उनकी रुचि नहीं रह गई और वो कुछ सीखना नहीं था, तो भी जब जरूरत होगी ना, जैसे महाप्रभु गोपी भाव में आविष्ट है राधा भाव में आविष्ट, किंतु दक्षिण देश में गए तो तत्व ज्ञानियों के साथ में तर्क वितर्क और सब लोगों से तर्क वितर्क विचार करके उनको सहज रूप में ही उन चीजों को तत्वावबोध करा दिया। ऐसे ही भक्त लोग रसिक भक्त लोगों में भी ऐसे होता है। जैसे हमारे बलदेव विद्याभूषण जी सब विषय में पारंगत, सब शास्त्र इत्यादि सब, और इसके बाद में पुरी में आए महारसिक परम विद्वान कौन थे वो राधा मोहन या क्या, उनके यहाँ आए सत्संग का विचार उनको सुनाया तो वो चमत्कृत हो गए और उनके शिष्य बन गए। फिर उन्होंने उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के यहाँ पर वृंदावन भेजा। ऐसे ही यदि गलता की बात न होती और लोगों में विवाद नहीं हुआ होता तो बलदेव प्रभु को कौन जानता? ये इतने बड़ा भारी विद्वान है, कोई जानता? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोई जानता? वैसा जो बलदेव प्रभु जिनके शिष्य हैं और वहां पर चारों संप्रदायों को समस्त विद्वानों को अपने विचारों से परास्त कर दिया, जब बलदेव प्रभु की इतनी महिमा है तो इनकी महिमा कैसे होगी? इसलिए ये सब भी कुछ प्रयोजन होता है। तो वो उन्होंने उपाय पूछा कि ऐसे दुर्लभ वस्तु में कैसे हम प्रवेश करेंगे? राय कहे यही कहो तेई कही बानी की कही ये भानुमंद किछु ही न जानी। राय जी कहते हैं इतने गंभीर प्रश्न और इतनी सुंदर समालोचना आलोचना आज तक हमको कभी सुयोग नहीं मिला। हुआ था यदि महाप्रभु के साथ में इनका यह संलाप नहीं होता तो जगत वंचित रह जाता। महाप्रभु जी ने उनको प्रकाश किया, ये इतने बड़े भारी रसिक विद्वान तत्वज्ञ सब प्रकार से योग्य हैं, ये महाप्रभु स्वयं उनको प्रकाश किया। तो वो कहते हैं आप जो कुछ हमसे कहते हैं वही मैं कहता। चैतन्य चरितामृत ये कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यह पुस्तक प्रकाश किया, वो कहते हैं कि गोविंद गोविंद लिखाए मोर, ये पुस्तक जो है ना गोविंद मदन मोहन इस पुस्तक को लिखवा रहे हैं, हाथ में पकड़ करके हमारा हाथ और लिखवा रहे हैं। कौन प्रेरणा कौन दे रहा है? गोविंद जी। और किसकी बातें लिख रहे हैं? गोपीनाथ की बातें लिखवा रहे हैं मदन मोहन, प्रेरणा दे रहे हैं गोविंद और लिख रहे हैं राधा गोपीनाथ की। ये सब चीजें मैं नहीं लिख रहा, जीव कभी लिख ही नहीं सकता है यदि वो न खुद लिखा दे राधा गोविंद। बल्कि विद्याभूषण कहते हैं कि ये गोविंद भाष्य हमने नहीं लिखा, लिखाए मोरे गोविंद जी लिखवा रहे, इसलिए उनका नाम रख दिया। व्यास जी ने कहा कि मैंने भागवत नहीं लिखा, किसने लिखा? वो पूर्ण पुरुष जो है उन्होंने लिखवाया। नारद जी की कृपा से मैंने उनके हाथों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और समाधि में मैंने देखा और ये कृष्ण ही जो पूर्ण ब्रह्म है नंदनंदन वो इसको प्रकाश। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैंने रामायण नहीं लिखा, कौन लिखवाया? रामचंद्र जी ने खुद ही लिखवाया, नहीं तो मैं क्या लिख सकता। ये सब चीजें नित्य अनादि हैं, कोई लिख करके नया ग्रंथ कुछ नहीं, ये तो ज्ञान तत्व है, रस तत्व है, नित्य काल प्रवाहित होता है, उसको लोक लोचनों के सामने में ये लोग प्रकाश मात्र करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के लेखक अथवा ये सब व्यास जी नहीं है, प्रकाशक है। ऐसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी प्रकाशक। यहाँ राय रामानंद कहते हैं कि आप ही हमारे हृदय में प्रवेश करके ये वक्ता भी आप ही हैं और श्रोता।
मुझे कहा
कि कहिए भालानंद, मैंने क्या अच्छा और बुरा कहा मैं ये नहीं समझता। कोई भी भक्त होगा उसको कोई पुष्पांजलि देता है चरणों में तो वो क्या कहते हैं? वो अपने आप हजम नहीं करता, बद्ध जीव हजम करने की चेष्टा करेगा और मरेगा। और मुक्त महापुरुष लोग होते हैं वो क्या लेकर के अपने गुरु चरणों में लेकर के देते, ये गुरु चरणों से मैंने सुना था, हमारा इसमें कुछ नहीं है। और बात भी सच है, जो कुछ भी सुना गया गुरु चरणों की कृपा से सुना, वैष्णव की कृपा से हमने सुना है। और इसका श्रेय कौन किसके ऊपर जाएगा? जिनकी बातें हैं गुरु जी के चरणों का नहीं, ये श्रेय। जब हमको जो प्रतिष्ठा मिल रही है ये प्रतिष्ठा के अधिकारी मैं नहीं, कौन हूँ? ऊपर से मालूम होता है मुख से निकल रहा है, मैं भी जो कुछ कर रहा हूँ ये मेरी बात है, अपनी है न किसकी है, हमारे गुरु जी की और इन गुरु वर्गों का ही है। यदि परिवेशन करने में गलती हो गया ना, तो वो गलती मेरी या साधकों का, और जो कुछ उत्तम चीजें हैं वो उनकी चीज है। यही भाव रखने पर माया नहीं पकड़ेगी, और नहीं तो माया अभिमान लगा करके डुबा देगी। इसीलिए ये करें कि कहिए भालो मंद, मैं भालो मंद अच्छा और बुरा में नहीं समझता जी, मैं क्या कहा कि तुम न जाने त्रिभुवन मध्य ऐसे कौन भी ये तुम्हार माया नाथ भई दे। पृथ्वी में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी इस माया नाथ, ये ठगपन जो आप जो कर रहे हैं, ठग रहे हैं, कौन ऐसा जीव है जो स्थिर रह सकता है? कोई भी स्थिर नहीं रह सकता। यहाँ पर मायानाथ क्या है? एक ब्राह्मण सन्यासी के रूप में उनके सामने खड़े हैं, और हैं कौन? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अखिल रसामृत सिंधु हैं, उनके सामने में खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं साधारण एक जीव हूँ, हमका हमारा इस प्रश्न का समाधान बतला दी। असंत दीनहीन होकर के ये उनकी माया कहवा रहे हैं, उस अंदर में प्रेरणा भी धरे और सुन भी रहे, वक्ता श्रोता दोनों हैं। इसलिए ये माया नष्ट कौन स्थिर रह सकता है? मोर मुखे वक्ता तुम्ही हो तुम्ही श्रोता, असंत रहस्य सुनो साधने र कथा। वक्ता भी आप, इतना सुंदर प्रश्न कोई जगत का नहीं कर सकता, संभव पर नहीं है किसी के। हम तो साधारण प्रश्न यही कर सकते हैं, कैसे भोजन मिलेगा, कैसे कपड़े मिलेगा, कैसे हैं हम सुखी रह सकते हैं, ये सारी संबंधी प्रश्न। अधिक से अधिक आत्मा की मुक्ति कैसे होगी, यही सब प्रश्न कर, ये सब गुरु प्रश्न करना किसी साधारण श्रोता का काम है। ये महाप्रभु जैसे व्यक्ति प्रभु का ही काम। अत्यंत रहस्य तो आपने जो कहा साधन, वो बहुत ही रहस्य, साध्य भी रहस्य है, किंतु साध्य को तो हमने कुछ कहा, अब साधन का जो रहस्य है सुनो साधन। राधा कृष्ण भावे ना है गोचर। राधा कृष्ण की जो लीला है प्रेममयी, अब विशेष करके ये विलास इत्यादि के संबंध में जो हमने बताया, ये अत्यंत गूढ़कर है, बहुत गूढ़ है। जैसे समझिए, एक आदमी को देखा, गया नंदगांव, और नंदगांव में जाकर देखा गोपियों से जहां उद्धव का भेंट हुई थी, वो क्या काम है उद्धव क्या है, गोपियों से और उद्धव जी की थी। उद्धव जी वहां पर हाथ जोड़ करके केवल बात से बैठे रहे, और श्रीमती राधिका भावाविष्ट होकर के दिव्य उन्माद में वो चित्र जल इत्यादि कर रही। आज तक जगत में कहीं वो प्रकाशित नहीं हुआ, भागवत में थोड़ा सा प्रकाशित, किसी के लिए संभव नहीं प्रकाशित कर। उद्धव जी पद पद पर चमत्कृत हो रहे, आनंद में भर रहे। कृष्ण ने हमको इसीलिए यहाँ पर भेजा, यही कृष्ण का महान अनुग्रह है मेरे ऊपर, यही सब सुनने का, ये सब मौका। अब वो देख रहे हैं चित्र जल इत्यादि, राधा जी के भावों को देख रहे हैं। अब ये उद्धव जी ने ग्रहण किया कि नहीं, देखा कुछ, अनुभव किया कुछ, सुना भी? प्रधानमंत्री का पद भारतवर्ष में सबसे बड़ा है, या राष्ट्रपति का, तो सुनने से मिल जाएगा, हम उस गद्दी पर बैठ जाएंगे, ना कुछ आस्वादन करेंगे। इलेक्शन के द्वारा जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा इत्यादि के, और मुख्यमंत्री इत्यादि होते हैं, ये सब इन लोगों का वोट देने का अधिकार होता है, ये सब लोग राष्ट्रपति चुनते, साधारण ये नहीं चुने, और उनके वोटों की गणना से ही वहां पर गिनती होती, वो आदमी राष्ट्रपति सुन लिया, प्रक्रिया भी शून्य हो जाएगा। ऐसे उद्धव ने वो सब चीजों को सुना, सुन करके किंतु उनका संस्कार वह नहीं था, उनके स्वरूप में ही वो चीज नहीं थी ये ग्रहण कर, बस इतना ही तक प्रार्थना किया। गोपियां जहां पर चलती हैं फिरती हैं, उनकी धूली हमारे सिर पर लग जाए तो पुरुष रूप में तो लगेगी नहीं, यदि घाट हो जाऊं और उस घाट पर गोपियां चली कहीं तो उनके चरण की धूली लग सकती, बस इतने से ही मैं अपने को खिताब किया। फिर कहा इसकी भी योग्यता नहीं, बंदे नंद ब्रज इसमें नाम, उन धूली कणाओं को वंदना किया बस और उसी में शांत हो गए, वो चीजें उनको भी नहीं मिली। इसलिए कहते हैं अति गूढ़ कर, जब उद्धव जी वहां पर गए, उनको देखा, उनकी बातें सुना, उनको भी नहीं हुई, नारद ऋषि की भी नहीं हुई, तब फिर किसको होगा? वेद की ऋचाओं को भी लोभ हो जाता है वस्तु से, तब उनको ये भाव कहीं किसी किसी श्रुति के मंत्रों को यह संभव है। किसी किसी ऋषियों में से लाखों कोटि में से किसी एक ऋषि के अंदर में भी ऐसी सब कोटि जन्म तक साधन भजन करके इस दुर्लभ चीज को पाए। विशेष करके राधा जी का भाव तो किसी को मिल ही नहीं सकता, कृष्ण को भी स्थायी रूप में नहीं होगा, स्थायी रूप में कृष्ण को विवादपादन करने के लिए जब इच्छा करेंगे तब होगा, कृष्ण का अपना जो स्वरूप है वही रहेगा, वो रसिक रहेंगे, रसिक शेखर रहेंगे सब तरह। तो दास्य बात्सल्य भारे ना है गोचर, दास्य और बात्सल्य के लिए भी ये गोचर नहीं है, अतः उनके लिए भी संभव नहीं है। दास्य माने हनुमान या वहां के रक्तक इत्यादि दास्य है, अथवा दास्य और बात्सल्य के बीच में रहने वाले जो सखा इत्यादि है, जब बात्सल्य को नहीं हुआ दास्य को नहीं हुआ तो इनको कहां से होगा, किनको होगा? जिनको महाभाव हो सकता है, महाभाव अनुराग तक में दास्य है, सख्य वाले दास्य वाले कहां तक हैं? प्रेम तक, और सख्य वाले अनुराग तक, शांत वाले तो उसमें है ही नहीं, दास्य वाले प्रेम तक हैं, उनमें स्नेह मान प्रणय ये सब दास उसमें नहीं होगा। किसी भी दास को मान हो गया ये नहीं संभव है, ये होगा ही नहीं, इसलिए उनके स्वरूप में नहीं है। अब रह गया सख्य अनुराग तक और किसी किसी की प्रिय नर्म सखाओं का महाभाव के नीचे अवस्था तक होगा, इसलिए इन लोगों में भी वो मधुर की संभव है। रह गया बात्सल्य अनुराग की चरम सीमा तक पहुंचेगा, वो तो महाभाव तक भी नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो उपकरण ही नहीं है जो इसको वो अनुभव कर सके। रह गए महिषियां द्वारकापुरी की, उनका प्रेम कहां तक? अनुराग की अंतिम दशा हो करके महाभाव को स्पर्श कर लेंगे, यहाँ तक तो प्रेम वैचित्र तक कुछ दिव्य अनुमान थोड़ा सा होगा, घुमाई सी या ज्वलित की भांति बस यही तक प्रज्वलित यह दिग्ध तक हो सकता है, इसलिए इन लोगों में भी ये संभव पर नहीं है। ये राधा जी की अपनी जो सपक्ष वाली है उनमें अधिरूढ़ भी वो छू सकती है, किंतु अधिरूढ़ की अंतिम दशा जो मादन मदन है ये वो ललिता विशाखा के लिए भी असंभव, जो अपने भावों को दूसरे में भी संक्रमित करके उन्हें भी अपने भाव जैसा बना देना और दिव्योन्माद की परम उच्च स्थिति इत्यादि में पहुंच जाना, मिलन में भी विरह, विरह में भी मिलन, ये दूसरों लोगों के लिए संभव पर है। ये सब चीज केवल मात्र श्रीमती राधिका, इसलिए राधिका का भाव तो जगत में कोई ललिता तक जब नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए सभा एक चीज में अधिकार है ये बतलाएंगे। इसलिए इन लोगों में दास्य बात्सल्य इत्यादि के लिए गोचर नहीं है। क्यों? महाभाव है ही नहीं है तो क्या गोचर होगा। एक आदमी मैं चाहता हूं कि मैं वकील हो जाऊं, हो जाएगा? पहले बीए पास करो, ग्रेजुएट हो जाओ, ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे इस भाव में राधिका जी की भाव को प्राप्त करना। तो ये तो असम सभी एक सभी गणेश, इसमें ग्रेजुएट कौन है? इनके अंदर में महाभाव है और इसको बढ़ाते 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 ये सखियां कौन है? मधुर रस के लिए केवल मात्र गोपियों के अतिरिक्त कोई प्रवेश नहीं कर सकता, गोपी एक मात्र का। उसमें भी गोपियां भी दो प्रकार, एक संबंधानुगा और एक सामर। संबंधानुगा जो है गोपियां हैं प्रजनी, वो कौन है? जथा तो संबंध नहीं, उन्होंने एक भावना की थी कात्यायनी व्रत में, ये कृष्ण हमारे पति हूं, इसलिए कुछ समय के लिए उनको ऐसा कह दे। वो अविवाहित होने पर भी कृष्ण को ही उन्होंने पति मान लिया, किंतु समाज अलाउ नहीं करेगा, इसलिए वो उसके अंदर में चली जाती। तो ये संबंध का कुछ थोड़ा सा छाप रहने पर भी वो है कि तो कामानुगा, और दूसरा होता है कामानुगा श्रीमती राधिका ललिता विशाखा, ये सब कामात्मिका है, ये कामात्मिका है। ये कामात्मिका भी दो तरह की, एक होता है पूर्ण रूप से कामात्मिका संभोग इच्छा मन, और दूसरा होता है उन सखियों को कृष्ण से मिला करके हम उनकी सेवा करें और सेवा के रस को हम उपभोग करें। बस इतना ही, सबे एक सखी गणेश यहाँ अधिकार, उनका अधिकार है, उनमें महाभाव है और वो कामात्मिका है, उनमें दोनों चीजें भी हैं। सखी है लीला रहे, यदि सखियां न रहे तो कृष्ण की इन लीलाओं का राधा जी और कृष्ण रहते भी विस्तार और साधन तो कर लेंगे, किंतु जगत में या गोलोक वृंदावन में इसका विस्तार है। सखी बिना यही लीला पुष्टि नहीं हो, बिना सखियों के लीला की पुष्टि नहीं होता है। सखी लीला विस्तार या सखी आस्पद, सखियां विस्तार करके इस लीला का स्वयं राधा कृष्ण को मिलाती है और अच्छा साधन भी कर, सेवा भी करती है। बस एक शक्तियों का ऐसी यदि कोई शक्ति हो उनका दो, इसी के लिए दंडकारण्य कितने 60,000 ऋषियों ने जन्म जन्मांतर उपासना की, एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्म तक उपासना करके और उसी रामचंद्र जी की विशेष कृपा से उनको वैसा शरीर मिला गोपी से, किंतु भावना की अभी सिद्धि नहीं हुई, वो सिद्धि हुई पूर्णमासी जी की कृपा और उन गोपियों की कृपा, नित्य सिद्धा जो गोपियां हैं उनकी कृपा से। इसलिए इतना सहज नहीं है जितना कि हम लोग, आज आया जोर कपन दे दिया, गोपी मंत्र दे दिया और बस उसको हो, बस उससे अनर्थ ही अनर्थ होगा। सखी बिना यही लीला अन्य नहीं गति, अन्य नहीं गति सखी भाव जे भाव ये तारे करे अनुमत, एकमात्र सखियों का भाव ही इस विषय में कुछ बढ़ा सकता है और दूसरों का नहीं। हजार कोई चेष्टा करे ओह नहीं, सखियों का भाव जब आएगा, कोई सखी अनुग्रह करके अपना भाव हमको दे दे और वो भाव हमारे अंदर में सदात्म रूप में हो तो हम लोग कुछ कुछ समझ सकते, ऐसे नहीं। जैसे नायमात्मा प्रवचने लब्ध हो न नमेधया बहुनाशेन जमेव एष विणुते तेन लब्ध ततश्चात्मा विद्वृणुते तनु स्वाम। भगवान की कृपा हमारे चेष्टा करने से नहीं मिलेगी। यदि भगवान अपनी तरफ से कृपा करके अपनी कृपा को हमारे प्रति दें तो हो सकता है। ये योग्य व्यक्ति है, इस पर कृपा करनी चाहिए। ये कृष्ण की भावना यदि हो तब तो हो। गुरु वैष्णव में भी ठीक ऐसा ही है, बहुत कुछ कर रहे हैं और गुरु प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, और कोई कुछ नहीं करता है उसके ऊपर में ऐसे ही प्रसन्न है। क्यों ऐसा होता है? हम लोग उनसे अधिक सेवा करते हैं, ये हो जाए। हमारे गुरु ईश्वर है, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं लगाई। महाप्रभु जी ने कहा था नहीं? क्यों एक शुद्र सेवक को रखा? अरे कितने ब्राह्मण भक्त लोग आपकी सेवा करना चाहते हैं, उनकी ब्राह्मण भक्तों की सेवा लीजिए। हमारे गुरु ईश्वर है, उन पर किसी वेद शास्त्र का भी अंकुश नहीं है, वो स्वतंत्र है। ऐसे वैष्णव लोग भी ऐसे तो ऐसे वैष्णव की कृपा इस पर पड़े, उस पर अंकुश नहीं है, कोई जागतिक कारण के रूप में नहीं हो सकता। क्यों हो गया? क्यों अब इसका कोई कारण? साधारण जगत में भी किसी को कोई स्नेह करता है या प्यार करता है, भले ही वो रूप है, कोई गुण नहीं है, एक अंधा पुत्र है और एक सर्व लक्षण पुत्र है, अंधे पुत्र को स्नेह करता है, इसका कोई कारण है? पर वो हो गया, क्यों हो गया? अब क्यों का उत्तर होता है? कोई नहीं दे, उसने ही अंधा होता है। इसी तरह से सखी गण जी करे स्वन, जो लोग सखियों की अनुगति करेंगे, जिनको लोग होगा उनकी अनुगति माने उनके अनुगत्य में चलेंगे। कैसे गोपी बोलती है, कैसे चलती है, जैसे गीता में सिद्ध प्रगत्य का भाषा समाधि सत्य के सब प्रज्ञ व्यक्ति जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, प्रज्ञा माने बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई है भगवान के चरण, वो व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे सोचता है, कैसे साधन करता है, कैसे खाता है, कैसे आचरण करता है, उसके लिए पूछा तो उसके लिए ऐसे ही जो सखियां वो कैसे चलती हैं, कैसे राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, कैसे उनके विचार हैं, जगत वाले नहीं समझेंगे इसे। एक कोई सखी कृष्ण के लिए कहती है कि हमारे पैरों में दर्द हो गया है, या हमारे पैर में एक कांटा लड़ गया है, इसको निकाल दो। ये सेवा ग्रहण करना हुआ कि सेवा करना हुआ? क्या हुआ?
सेवा करना हुआ,
सेवा कराना हुआ,
करना
कैसे हुआ? कृष्ण को कह रहे हैं कि कृष्ण तुम हमारे इस कांटे को निकाल दो, तो कृष्ण के द्वारा अपनी सेवा कराना हुआ ना? ऐसा लगता है ऐसा ही संसार में इसका कृष्ण को यही समझ, गोपी ने अपने आप कांटा गड़ा दिया कृष्ण की सेवा कराने के लिए, करने के लिए ऐसा उन्होंने किया जिससे कृष्ण की सेवा मेरी तरफ से हो जाए। कृष्ण उसके कोमल चरणों को देखकर के हाँ कितना कोमल चरण है, कृष्ण को आनंद हो जाए। कृष्ण को आनंद देने के लिए ऐसा स्वांग बना, इसलिए गोपियों के भाव को विश्व ब्रह्मांड में कोई स्पर्श नहीं कर सकता और ये संभव पर नहीं है, यहाँ पर अपराध हो जाएगा। गुरु जी से यदि आप अपना चरण स्पर्श करा लेना, आपका पैर कहीं कट गया और गुरु जी बांधने के लिए बैंडेज करने के लिए आ रहे हैं, कराएंगे? डॉक्टर कर देगा, दूसरा कर देगा, गुरु जी से नहीं कराएंगे। किंतु हाँ ऐसा कोई सेवक हो सकता है जो गुरु जी कभी गुरु जी हमारा ये पैर में ये हो गया जरा ये ठीक कर दे तो गुरु जी ठीक कर दे, किंतु साधारण व्यक्ति के लिए ये सब नहीं। इसलिए गोपियों की इन भावों को जो कैसे चलती हैं, क्या करती है, उनकी भावना क्या होती है, जब स्थित प्रज्ञ क्या भक्ति क्या है नहीं समझ सकते, उनको कैसे समझेंगे? इसलिए सखी भावे देख पड़े अनुगत सखियां जैसे करती बहुत सौभाग्यवान जीव है यदि किसी ऐसे उत्तम अधिकारी से जब इनसे जो रहस्यों को जान करके उनकी अनुगति उनका अनुगत्य में ऐसी सेवाओं को करता है तो वो इसे को पा ये आरंभ होगा बड़ी भक्ति से जैसे ठाकुर जी को पंखा चला रहे ठाकुर जी को अभी ये दुलाया है ठाकुर जी के प्रति तो ये तो है कि ये संसार में सबसे बड़े संत हैं वो प्रभु है मेरे दास ये तो अर्चन मार्ग में रहता है किंतु झूले पर उनको बैठा करके जब दुला रहे हैं तो उस समय में तो ऐसी भावना हो सकती है कि इनको तो कोई पुरुष छू नहीं सकता उसकी जोड़ी को कोई उसकी परिधि में कोई जा सकता है कोई पुरुष भावना वाला वहां जा ही नहीं सकता जहां पर उनका झूला रहता अब ये बने में सोचे ये हमको जो सेवा मिली ये गोपियों के अनुग्रह से मिली गोपियां जैसे खिलाती हैं हम भी उसको ऐसे तो ये किसको होगा नहीं तो बड़ी भक्ति में दूसरे रूप का ये भाव ही नहीं आएगा जब तक गोपियों का कोमल भाव मधुर भाव हमारे बहुत ही दुष्कर है इसकी चिंता करना भी बड़ा भारी कठिन है ब्रज के लोगों में ये स्वाभाविक है किंतु आज तो ऐसा संग नहीं होने से कुछ गड़बड़ी पंच उपासना में इधर उधर में अभी यहाँ का कोई सुंदर ये सब दुर्गा का गायन करने वाला अभी दुर्गा जी का रात जागरण होगा वहां पर जाकर के दुर्गा जी का कीर्तन करने या करने लग जाए यहाँ से सब कुछ सुना घर में दुर्गा जी भी राधा कृष्ण बहुत कठिन है जब तक एकांतिक भाव और ऐसा नहीं होगा गोपियों ज्ञान गोपियां क्या है यहाँ तक कि बरसाना नंदगांव में भी इसका स्वरूप बिगड़ गया अब लाठी से होली चलती है होली खेली जाती है रंग से और अंतर की प्रेम की भावना से अब वहाँ लाठियों से लक्ष्मण और वो क्या वो लक्ष्मियों से बचाती है कोई बात नहीं और किसी का सिर फट गया किसी का कुछ क्या होता है हाँ होता है ना वो गहने का ढाल ले लेते हैं ये प्रेम की होली है ये प्रेम की होली ये जगत में संभव ही नहीं है राधा अच्छा देखो अभी जो परसानानंद गांव में होली या जो कुछ लीला होती है जो कुछ भी होती अधिकांश ब्राह्मण लोग ही करते हैं गोप वाले गुर्जर और ये सब नहीं करते क्यों उनको कुछ पता ही नहीं है आजकल के गोपों को ऐसे क्या है और ब्राह्मणों के हृदय में कैसे भाव है वहां के ब्राह्मण भी ये समझेंगे हम वही नंद बाबा हैं कुछ भावना तो रखेंगे किंतु किसी गोप का छुआ हुआ चावल नहीं खाए तो गोप का भाव का है वैसा गर्व नहीं कह रहे वो संभव पर नहीं स्थूल व्यापार नहीं है जिनकी भावना ऐसे सर्वोत्तम है रसिक वैष्णवों के संग में है सब कहीं राधा कृष्ण कुंज सेवा साथ पाए से ही साथ पाई के हार नहीं कहू एक गोपियों के अतिरिक्त जिसका गोपियों जैसे मनोवृत्ति चित्त वृत्ति है भावना है ऐसी सेवा की हो गई है और ऐसा संसार जिसका उदय हो गया वही लोग राधा कृष्ण के कुंज सेवा में प्रवेश होकर के उनकी सेवा का सुजोग पाए वो भी जन्म में नहीं इस जन्म में तो गता कति करेंगे अनुगत्य में वैसे ही चिंता करेंगे पाने की और जितना ही वैष्णवों का ऐसा शुद्ध संग होगा और इन लीलाओं का श्रवण करेंगे सुनते सुनते इसमें आवेश होंगे जन्म जन्मांतर में आवेश गुणतर होता जाएगा दृढ़तर हो जाएगा तब कहीं जाकर के ब्रज में जन्म होगा तो नित्य सिद्धा गोपियाओं का संग होगा तब कहीं जाकर के न जाने कितने अभी समय लग जाए और जो अत्यंत सौभाग्यवान है योग मैं उनको कृपा करके बहुत जल्दी ही अवकाश दे देंगे राधा कृष्ण कुंज से वास्तव भेजे से ही पाए से ही साथ पाई से आर नहीं तो और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है इसके अतिरिक्त अतः गोपियों के अनुगत्य के अतिरिक्त कोई उपाय और गोपियों का अनुगत्य कैसे मिलेगा कृष्ण भक्ति रस भाविता मत बल्कि कृष्ण भक्ति रस भाविता यहाँ पर भी नहीं होगा कृष्ण भक्ति रस यदि राष्ट्र सबके बात्सल्य का होगा तो नहीं होगा, वो केवल गोपियों के अनुगत से वाली गति, उस रस में रसित कोई वैष्णव होगा तब होगा। विदुर सुख रूप स्वप्रकाशो विभाव क्षणमपि नहि राधा कृष्णयोरिते स्वा प्रवहति रस पुष्टिम चित विभूति रिवेशेष श्रयति न पदमासा कह सखी नाम रसज्ञ। ये जो राधा कृष्ण की लीला है और राधा कृष्ण के जो भाव है अंतिम मधुर रस वाला भाव या उनकी लीलाएं जगत जैसे देखने में होने पर भी जगत की नहीं है, सद्बंधु लौकिक सद्बंधु कहा किंतु वत लगा दिया, संबंधु वत जगत संबंधी वो नहीं है लौकिक भाव, लौकिक भाव से लाख कोटि जन्म में भी थी। विधुरपि सुख रूप ये जो राधा कृष्णयो राधा कृष्ण लीला उनकी पुण्य सेवा और दूसरी जो सेवाएं हैं ये सब सेवाएं विभुरपि कृष्ण जैसे विभु हैं, सब व्यापक सर्वशक्तिमान है, समर्थवान है सर्वशक्तिमान है, ऐसे ये लीला भी विभु सर्वशक्तिमान जिसको जिसके हृदय में वो चाहे भी उसी के हृदय में प्रकटित हो, लाख प्रयत्न करो नहीं आएगी, यदि वो प्रसन्न खुद हो गई तो यहाँ पर अवसर। यहाँ की लीला ऐसी नहीं, यहाँ के कर्म ऐसे नहीं, वहां की लीला में भी एक व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व माने व्यक्ति की भांति वो कृपालु है, सर्वगुण संपन्न है सर्वशक्तिमान है वो कृष्ण की भांति, जैसे यहाँ की भूमि वो विभु है, वो किसी को भी कृष्ण प्रेम दिला दे, कृष्ण राधा का दर्शन करा दे, सेवा में प्रवेश करा दे, जैसे किसी ने सेवा कुंज निधुबंध बंसीवाद शेर कदम्ब वो उद्धव क्यारी बंसीवट हांडी वट इत्यादि में जो स्थान है उन स्थानों की एक दूरी भी चाहे ना तो इस चीज को दे दे, वो समर्थ है, गोपियों की कृपा करा दी और गोपियों की कृपा होने पर गोपियों इन्हें ग्रहण कर लेंगी और उस भाव में आ गई, बिना गोपियों के नहीं होगा, गोपियों के प्रति उनकी कृपा को लाभ करा दे, तो वो विभु है जैसे कृष्ण विभु है, व्यापक है सर्वशक्तिमान है सर्व अंतर्यामी है, ऐसे ही उनकी लीला भी उनकी भूमि भी ऐसे ही सर्व व्यापक और सर्वशक्तिमान है। और कैसी है सुख रूप आनंद रूप है वो लीला, बद्धजीव भी यदि इनकी चिंता करता है ना तो उसको भी आनंद की अनुभूति होती है, तो मुक्त पुरुषों को तो छोड़ो ये कार्य नहीं करती, इन लीला कथाओं को सुनने में भी समान आनंद है। स्वप्रकाश हो स्वप्रकाश माने क्या, किसी के साधन भजन से वो नहीं प्रकाशित, तो अपने आप कृपा करके प्रकाशित, जैसे कृष्ण है नारद जी हजार चेष्टा करें जब तक कि कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक उनके ध्यान में नहीं आए, नहीं आए और एक फलक मात्र देखाया, इसके बाद नारद जी ने कोटि कोटि चेष्टा की, रोते रहे साधन भजन किया, फिर दिखाई दिए कर दिए जब नहीं, इस शरीर में हाड़ चाप रक्त मांस के शरीर में और इस फूल मन वाले शरीर में तुमको दर्शन नहीं दूंगा, और साधन भजन करते करते समय पर तुम्हारा शरीर छूट जाएगा और छूट जाने के बाद में तुमको दिव्य शरीर मिलेगा वैकुंठीय शरीर, और उस शरीर के द्वारा तुम सर्वत्र हमारी लीलाओं का दर्शन, मुझे सर्वत्र दर्शन, इसलिए ये स्वप्रकाश सूर्य को हम स्वप्रकाश अभी कर सकते हैं मान सकते हैं, सूर्य को हम रात में 12 बजे यदि उगाना चाहें इंडिया में तो 12 बजे रात में उगेंगे या नहीं उगेंगे, यहाँ पर कब उगेंगे 6:30 जैसा समय है वैसा ही, इसलिए सूर्य को लाख ये बत्ती जला दो, पेट्रोमैक्स जला दो, बिजली जला दो लाख, किंतु सूर्य को हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो सब प्रकाश, यद्यपि सूर्य भी सब प्रकाश नहीं है, पर प्रकाश अपेक्षा रखते हैं, राधा जी की कृपा चाहते हैं उसके द्वारा होता है। ऐसे सूर्य को भी उदाहरण के लिए भी मान लें तो रात में जैसे हमारे अपने प्रयत्नों से नहीं देख सकते, ये लीला को भी अपने आप साधन भजन के द्वारा नहीं हो सकता। यदि हम प्रार्थना करें और वो प्रसन्न हो जाए, वो अपनी लीला को यहाँ पर प्रकट कर, अन्यथा नहीं होगा। हजार कृष्ण ये भक्ति अच्छी नहीं, समर्थन कर। अच्छा, क्षण अपनी नहीं राधा कृष्ण और रीते, एक क्षण भी राधा कृष्ण की जो लीला है बिना स्वा, स्वा माने क्या, अपनी जो दासियां हैं, सफेदियां हैं, गोपियां हैं, बिना गोपियों के कृपा के एक मिनट भी ध्यान में भी वो लीला नहीं प्रकाशित होगी। कब होगी, यदि गोपियों की कृपा स्वा, राधा जी और कृष्ण की जो स्वा अपनी है, ये स्वा कहाँ आया, अनर्पति समर्पयि तुमोज्वल रसां स्वभक्ति, यही स्व, ये स्व किसके लिए आया, वहां पर गोपियों के लिए भी नहीं आया, राधा जी के लिए स्व आया, और उसकी प्रिया शोभा है गोपियां, वो गोपियां कौन, हवल्लास, ये गोपियां भाई, इन गोपियों की कृपा ही जीवों के लिए ये संभव होकर के उस सेवा में अधिकार दे सकते हैं सबका। इसलिए रीते स्वास्थ्य, बिना अपनी जो गोपियां हैं उनकी कृपा के एक क्षण भी इसका चिंतन नहीं होगा, न दर्शन होगा, न अनुभूति होगा, हजार तुम चेष्टा करो वो सब चीजें नहीं आई। प्रवहति रसपुष्टिम चित विभूति रिवेश, जिस प्रकार से ईश्वर है, ईश्वर किसको कहते हैं, इनमें ईशिता है, ईशिता माने क्या,
कंट्रोलिंग पावर।
अच्छा, कंट्रोलिंग पावर कैसे होता है, कैसे मिले, एक आदमी 10,000 श्रोताओं को कंट्रोल कर रहा है तो एक दूसरा आदमी भी तो कर सकता है, वो क्यों करता है, क्योंकि उतना तत्पर्य है, बोलने की शक्ति ऐसी सुंदर है और उसमें तत्व भी इतना सुंदर है जिसको देख करके सभी आकर, इसलिए उसमें कोई शक्ति है, तो जिस ईश्वर में इसीता अर्थात वो शक्ति है, चित विभूति है, वो ईश्वर होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। ईश्वर का ही लक्षण है अघटन घटन शक्ति, जो ये नहीं होगा उसको भी करा देता है, जो नहीं होने वाला है उसको कहते हैं, जो इस जगत का संघटन सृष्टि इत्यादि कार्य करता है, नहीं करवाता है दूसरों से धन और इसका पालन पोषण भी करता है, और दूसरे से इसको ब्रह्मा इत्यादि से इसका जन्म इत्यादि करता है, और सबको कंट्रोल करता है अपनी शक्ति के द्वारा, सर्वसमर्थ है उसको कहते हैं। इसलिए उसमें विभूतियां हैं, सिद्ध विभूति, बिना किसी विभूति के ईश्वर पर नहीं हो सकता, ईश्वरत्व को प्रकाश करता है, जैसे कृष्ण है उतना जैसे राक्षस, जो कंस का भी छक्का छुड़ा दिया युद्ध में, हारी नहीं, तब कंस ने कहा कि तू मेरी बहन है और तुम हमसे मत लड़, और उसे भाई बहन का संबंध बना दिया, जब तू मेरी बहन हो बड़ी और मैं छोटा भाई, इससे हमारे ऊपर में यदि कभी विपत्ति पड़े तो तू मेरी रक्षा, इसलिए उसकी बहन हो गई। और जो कंस से नहीं हारी, कंस 10,000 हाथियों या 50,000 हाथियों का बल रखता था, और वो कृष्ण के पास में गई दूध पिलाने के लिए, और कृष्ण ने कुछ भी नहीं किया, बस अपने हाथों से पकड़ लिया और चिंतने लगे, इसी में उसका प्राण चला, कोई भी प्रकाश निकले, किंतु इसमें इसका प्रकाश है कि नहीं है, अच्छा जी तो, किंतु इसका नहीं रहती तो हम लोग जैसे हैं मर जाते, ये है कि कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया छोटा सा बच्चा, हम आप नहीं कर सकते। कैसे उन्होंने किया? इच्छा शक्ति है। ये इच्छा शक्ति कौन है? शक्ति से राधा जी बाम में, बाम हाथ के बाम में अंगुली से, अर्थात तो राधा जी से उपाधि, और लोगों में प्रचार किया जो मैंने उठाया। इसलिए ये सब विभूति, ऐसे विभूतियों के बिना ईश्वर उत्पन्न नहीं, भगवत्ता नहीं होती। उसी तरह से ये विभूतियां हैं, किस विभूतियां हैं? गोपियां। गोपियों के बिना कृष्ण की ये जो रश्मि विदाएं हैं ये संभव पर नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती। सखी स्वभाव की इस प्रकार से सखियों का यह जो स्वभाव है, कैसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होती है, ये भाई अकक्ष अकक्ष न कहने से भी दूसरे नहीं समझेंगे, समझ नहीं सके। तभी जिनका कुछ संस्कार है वो कुछ कुछ उन संस्कार वालों के लिए ही प्रचार और ये कथा है। जिनका जहां तक अधिकार है अपने अधिकार के अनुसार में उसको आज ये नहीं कल से 5:30 बजे हम आरंभ कर देंगे। आज कोई आया नहीं इसलिए थोड़ी सी देर हो गई।